ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जेन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कौन श्लोक है? त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धम् भर्तु समे स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर् यदि स्याद् अधिगम्य मध्वा पिबेति रासौ न विदां प्रवादः। त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धम् भर्तुः समे स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्याद् अधिगम्य मध्वा पिबेति रासौ न विदां प्रवादः।
Thank you.
शब्दार्थ ब्राह्मण उवाच योग्य ब्राह्मण जड़ भरत बोले त्वया तुम्हारे द्वारा उदितम कहा गया व्यक्तम अत्यंत स्पष्ट अभिप्रलब्धम विरोधाभास रहित भवतु ढोने वाले का शरीर सह वह में मेरा सात ऐसा होता यदि यदि वीर हे वीर पुरुष महाराज रहुगण भार भार बोझा गंतु चलने वाले का अथवा शरीर यदि अगर सात होना था अधिगम्यम लक्ष्य अध्वा पथ पीवा अत्यंत हृष्ट पुष्ट इति इस प्रकार राशौ शरीर में न नहीं विदाम स्वरूप सिद्ध पुरुषों का प्रवाद वाद विवाद का विषय अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की महान ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा हे राजन तथा वीर आपने जो कुछ व्यंग में कहा है वह सचमुच ठीक है। ये मात्र उलाहनापूर्ण शब्द नहीं है क्योंकि शरीर तो वाहक है शरीर द्वारा ढोया जाने वाला भार मेरा नहीं है क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। आपके कथनों में तनिक भी विरोधाभास नहीं है क्योंकि मैं शरीर से भिन्न हूँ मैं पालकी का ढोने वाला नहीं हूँ वह तो शरीर है। निसंदेह जैसा आपने संकेत किया है पालकी ढोने में मैंने कोई श्रम नहीं किया क्योंकि मैं तो शरीर से पृथक हूँ। आपने कहा कि मैं हृष्ट पुष्ट नहीं हूँ ये शब्द उस व्यक्ति के सर्वथा अनुरूप है जो शरीर तथा आत्मा का अंतर नहीं जानता। शरीर मोटा या दुबला हो सकता है किंतु कोई बुद्धिमान यह बात आत्मा के लिए नहीं कहेगा। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है मैं न तो मोटा हूँ न दुबला अतः जब आप कहते हैं कि मैं हृष्ट पुष्ट नहीं हूँ तो आप सही हैं। और यदि इस यात्रा का उद्देश्य तथा वहाँ तक जाने का मार्ग मेरे अपने होते तो मेरे लिए अनेक कठिनाइयाँ होती किंतु इनका संबंध मुझसे नहीं मेरे शरीर से है अतः मुझे कोई कष्ट नहीं है। तात्पर्य भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मज्ञानी कभी शरीर के सुख तथा दुख से विचलित नहीं होते। यह भौतिक शरीर आत्मा से सर्वथा पृथक है
और शरीर के सुख तथा दुख व्यर्थ हैं। तब साधना का उद्देश्य शरीर तथा आत्मा के अंतर एवं शरीर के सुख दुख से आत्मा जिस तरह अप्रभावित रहता है उसे पहचानना तथा समझना है। जड़ भरत आत्म साक्षात्कार को प्राप्त थे, वे देहात्म बुद्धि से सर्वथा परे थे, अतः उन्होंने राजा को विश्वास दिलाया कि उनके संबंध में कही गई उसकी विरोधी बातें आत्मस्वरूप उन पर लागू नहीं होती। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। तो आज 15वां अध्याय बोलना था लेकिन मैं पीछे आ गया क्योंकि हमको उसकी धारणा नहीं थी। 15वें अध्याय की यादगार नहीं थी तो इस पर कुछ विचार करेंगे। अथ सिंधु सौवीर पते रहुगण से व्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुल पतिरा सेविका वाह पुरुषानवेशन समय एस द्विजवर लब्ध वृष्टि सहगृहित पूर्व वृष्टि सहगृहित गृहित प्रसभम अत दरहम वा सीविका महानुभाव। एक समय की बात है, सिंधु और सौवीर देश का राजा जा रहा था व्रजत, भगवान कपिल देव के आश्रम में जा रहा था। ये सिंधु, इसी को सिंध कहते हैं, तो राजा रहुगण सिंध प्रदेश के थे और जुड़ा हुआ था। ये हमारा जो गुजरात है कच्छ भुज है ये बहुत निकट है आज के समय में, पहले तो ये जुड़ा हुआ था भारत का अंग था तो अब तो पाकिस्तान हो गया है सिंध, लेकिन सिंध जुड़ा हुआ था भारत से। तो सिंध और सौवीर, सौवीर मतलब सौराष्ट्र, इन दो प्रदेशों का राजा था रहुगण। तो उसको एक बार बड़ी लालसा हुई कि मैं भगवान कपिल देव का सत्संग करूं, राजा होते हुए भी सत्संग के लिए चल दिया, बहुत बड़ी योग्यता उसकी थी अध्यात्म को जानने की, भगवान के भक्ति को जानने की इच्छा थी, तो राजा चल दिया वहां से सिंध प्रदेश से जाने के लिए भगवान कपिल देव के आश्रम में गंगा सागर, जो कलकत्ता से और ज्यादा पूरब है उधर, इतने लंबे दूर की यात्रा वो करना चाहता था, चल दिया था और पालकी पर चढ़ कर जा रहा था, राजा था और पालकी में कहार किसको लेगा उसकी जहां इच्छा थी, जिसको भी पकड़ करके लगा देता था। आज प्राइम मिनिस्टर को भी अधिकार नहीं है कि बिना किसी को वेतन दिए और कहीं से किसी को लगा ले पालकी में, लेकिन उस समय वो राजा था और पालकी में रास्ते में जहां तहां कुछ लोगों को जो पालकी ढो सकते थे लगा देता था। कोई कहीं जा रहा हो, चाहे अपने ऑफिस में जा रहा हो या घर जा रहा हो, चलो पालकी ढो। तो राजा का ऐसा प्रभाव था, अधिकार था, वो लोग धोते हुए चल रहे थे। अथ सिंधु सौवीर पते रहु गणस्य व्रजत, तो इक्षुमतीत नदी है कोई, अभी हमको पता नहीं है, इक्षुमती नदी के तट पर एक कहार बीमार पड़ गया, पालकी ढोने में असमर्थ हो गया, बीमार हो गया। तब अब दोनों तरफ समान संख्या चाहिए ना, तो कोई आदमी खोजने लगे वो लोग। जो पालकी ढोने वाला सरदार था तो तत्कुलपति ना, उस सरदार के द्वारा खोजा जाने लगा, वो लोग खोजने लगे कि कोई आदमी मिले। तो संयोग से जट भरत जी मिल गए। सब द्विज वरह वे ब्राह्मण श्रेष्ठ मिल गए। और वहीं पर उनका खेत था, उनके भाइयों ने खेत पर रख दिया था कि इसको देख करके नीलगाय हरि इत्यादि भाग जाएंगे। वो भगाते नहीं थे किसी पशु को, लेकिन भाई लोग बैठा दिए थे कि ये रहेगा तो बराह नीलगाय हरिण ये सब खेत को नहीं खाएंगे। तो वे बैठे हुए थे, बिल्कुल शरीर उनका नग्न था, केवल कौपीन एक बांधे थे, कौपीन बहुत गंदा कौपीन, कई दिन नहाए हो गया था, वो तो देह से परे परमहंस थे, खूब संगठन संगठित शरीर था, तो अखंड ब्रह्मचारी थे, बहुत बलवान शरीर था। तो ये जब प्राप्त हुए तब उन लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई कि ये सब पीवा, ये तो बहुत मोटा है और जुआ और जुआक है, जवान है, संघन नांग, इसका शरीर बड़ा गठीला है, अब ले चलो इसको पालकी में जोतो। और कोई आईडी की जरूरत नहीं है कि कहाँ घर है, कहाँ के पंडित हैं, क्या बाप का नाम है, क्या काम करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, बस मोटा तगड़ा है और जवान है। तो उस पालकी ढोने वाले में जो सरदार था उसने कहा ले चलो इसको, ये तो बैल और गधा की तरह भार ढो सकता है, गोखर व धुरम बहतुम बोधुम अलम, गाय बैल और गधा की तरह ये भार ढो सकता है, तो बहुत तगड़ा है, ले चलो। तो लोग चारों तरफ से घेरे जट भरत जी को और कहे चलो, उठकर चल दिए, कोई आनाकानी नहीं किए, वे सब बातें जानते थे, उन लोगों की बातें सुन रहे थे, तो समझते थे सब, तो कहे चलो, तो चल दिए। पहले भी बिना वेतन दिए कई लोग पकड़े गए थे कहार के रूप में, उनके साथ ये भी पकड़ लिए गए और पालकी के पास आए तो प्रसभम जबरदस्ती पालकी में लगा दिए गए, जैसे कंधा लगा दिया गया। लोग कहे डांट करके कि देख नहीं रहे हो, पालकी ढोना है, राजा की पालकी ले चलना है, ढोगे ना? तो जट भरत जी ने कहा हां, तो जबरदस्ती उनको लगा दिए धोने में। यह जट भरत जी जैसे महाज्ञानी के जीवन में घटना घटी थी। एक राजा से संवाद हुआ था, वो संवाद बड़ा सुंदर है, उसी का एक श्लोक यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जट भरत जी एक ब्रह्मर्षि थे, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, तो वे रास्ता चलते थे तो अन्य शूद्रों की तरह रास्ता नहीं चलते थे। जो रास्ते में किसी चींटी को की कीड़े पतंग को दबा दे अपने पैर से, वे ऐसे नहीं थे। और दूसरे जो कहार थे वो सब शूद्र थे, चलते थे साबस साबस करते हुए राजा को ले चलते थे, और चींटी मर रही है या कोई कीड़ा दब रहा है इसका कोई ध्यान नहीं था। लेकिन ये द्विजवर ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, ये केवल एक बाण देखते थे, वे चार हाथ आगे तक बस, जहां चलते थे अपने पैर से चार हाथ दूर बस देखते थे, एक बाण कहते ईशु मात्र अवलोक गते, केवल तीन चार हाथ दूर देखते थे। और इसीलिए देखते थे कोई चींटी कोई कीड़ा पैर के पास पैर से दब न जाए। इसलिए प्रभुपाद जी इस पर प्रपर्ट लिखे हैं कि ये वैष्णव का व्यवहार है। वैष्णव बड़े दयालु होते हैं, किसी भी स्थिति में दूसरे जीव की हत्या न हो, उनको दुख न हो, इसका भी ध्यान रखते हैं। तो वे चींटी बचा कर चलते थे, और चींटियां कभी कभी लाइन लगा लेती हैं, आप देखे हैं ना, और चलते हैं तो उनको बचाने के लिए वे अन्य लोगों के चलने की जो गति थी उससे मेल नहीं होता था, ना समाहित गति। इनके कंधे पर पालकी थी, इसका इनको ध्यान बिल्कुल नहीं था। इनका ध्यान रास्ता चलते समय चींटियों को बचाने में था। तो वे कभी कभी अपना पैर ज्यादा बढ़ाते थे कि चींटी न रौंद दी जाए, तो पैर आगे बढ़ाने में पालकी की चाल मेल नहीं खा रही थी अन्य कहारों के साथ। तो पालकी में बैठा हुआ राजा कभी हद से आगे हो रहा था, कभी चींटियों को बचाने के लिए पैर की गति रोक देते थे, रोक देते थे तो पीछे होता था ऐसे। तो पालकी में आंदोलित हो रहा था राजा, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊंचा कभी नीचा हो रहा था, तो राजा को डिस्टर्बेंस हो रहा था। उसने कहा बड़े ही शांत स्वर से कहा, उसको तो क्रोध आ गया, परंतु राजा लोग बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं और क्रोध को प्रकट नहीं किया। कहा भो बढ़ारा साधु अतिक्रमता, ठीक से चलो, मेरी पालकी ऐसे हिल क्यों रही है। तो जो अन्य कहार थे जटभर जी के अलावा वे डर गए कि राजा अभी तो शांति से बोल रहा है, लेकिन जो गड़बड़ी हो रही है पालकी ढोने में इसको बता देना चाहिए। तो उन लोगों ने कहा सरकार ये जो अभी अभी लगा है अभी तो एक आध किलोमीटर धोया होगा, तो ये अभी अभी लगा है, यही नहीं चल रहा है, फास्ट चल नहीं रहा है। सरकार हम इसके साथ पालकी ढोने में पार नहीं पाएंगे, ये ठीक से चल नहीं रहा है, कभी आगे पैर बढ़ाता है कभी पीछे हटाता है, तो हम लोगों के चाल के साथ इसकी चाल का मेल नहीं है, हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ढो पाएंगे, ये पालकी ढो क्या रहा है और डिस्टर्ब कर रहा है। तो राजा रहुगण पालकी से मुख निकाल करके देखा, खड़ा हुआ उन लोगों के साथ, और जटभरत जी को देख करके उसने उन पर ताना मारा, ओ भ्रात कष्टम, बड़े दुख की बात है, भाई कहा, भाई बड़े दुख की बात है कि तुम तो पालकी बहुत दूर से ढो रहे हो, बहुत दूर से और बहुत टाइम से ढो रहे हो, और अकेले पालकी उठा करके चल रहे हो, तुम्हारी सहायता करने वाले और कोई नहीं है, ये सब ताना मार रहा था, इसका मतलब है कि तुम बहुत कम दूर से ढोए हो और इसके साथ ये लोग सहायता कर रहे हैं। और तुमको बहुत थकावट हो गई है, उरु परिश्रांत असी, तुम बहुत थक गए हो, उसके कहने का आशय था कि तुम बिल्कुल नहीं थके हो, लेकिन ऐसे बोल रहा था, व्यंग कर रहा था कि तुम बहुत थके हो और बुढ़ापा ने तुमको और तंग कर दिया है, इसका अर्थ था कि तुम बूढ़े नहीं हो, तुम युवक हो, लेकिन बोल रहा था सब कुछ उल्टा कि तुम बूढ़े हो, बहुत थक गए हो और जवान नहीं हो और पीला मोटा भी नहीं हो, तुम्हारा शरीर ढीला हो गया है, अब बहुत कमजोर हो गए हो, इस तरह से बोल रहा था, तुम बहुत देर से ढो रहे हो पालकी और बहुत समय से, बहुत भार ढोए ना तो तुम थक गए हो, राजा ने सोचा कि जब गलती का पता लग गया, कहारों ने साफ कहा कि सरकार हमारी गलती नहीं है, यही नया नया लगा है, यही ठीक से नहीं चल रहा है, तो उसने सोचा, राजा राजनीति जानता था ना, उसने सोचा कि एक व्यक्ति का दोष दूसरे में भी फैल सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ये नहीं ढो रहा है, अगर इसको छोड़ दूं तो धीरे धीरे सब कहार भी कहेंगे कि ऐसा नहीं अच्छा ढोने से छोड़ देता है राजा, तो सब भाग जाएंगे, या कभी बगावत कर सकते हैं, ये कहीं यूनियन बना लेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा, कहार संघ बना लिए और बगावत कर दिए, या कहीं पालकी पटक दिए, ये ठीक नहीं होगा, तो इसीलिए इसको डांटना चाहिए, तो व्यंग बोलने लगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसने सोचा कि एक व्यक्ति में दोष है, कमी है, लेकिन अन्य में भी आ सकती हो कमी। तुरंत यूनियन बना लेंगे और स्ट्राइक करेंगे, इसलिए उसने कहा। लेकिन ये नहीं कहा कि ठीक है छोड़ दो तुम आराम करो, ऐसे व्यंग बोला। क्रोध आ गया था थोड़ा, लेकिन जट भरत जी उस दशा में भी पूर्ण शांत थे, उनको व्यंग का कोई असर नहीं हुआ। वो तो गुणों से अतीत थे, त्रिगुणातीत थे, ब्रह्मभूत थे। यही अंतर दिखाया गया है कि राजा रजोगुणी था, रजोगुण में था, तमोगुण में उसको ये भावना थी कि मैं राजा हूं, मेरी सेवा करना प्रजा का कर्तव्य है। तो ये लोग गलती करते हैं तो इनको दंड देना जरूरी है, लेकिन पहले साम नीति से काम लिया। राजाओं की चार नीति प्रसिद्ध है, सब जगह साम नीति, दान नीति, भेद नीति और नहीं तो दंड नीति। जैसे कोई व्यक्ति अगर राजा का विरोध करता है तो राजा उसे समझाता है पहले, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा विरोध नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए उचित नहीं है। तो इस तरह से समझाए प्रशंसा करके, तो इसको साम नीति कहते हैं। और इस पर भी अगर वो व्यक्ति न माने तो उसको कुछ पैसा खिला करके दे करके शांत करना चाहिए। इसको दाम नीति कहते हैं, पैसा दे करके उसको अपने पक्ष में किया जाता है। और इस पर भी काम न लगे तो भेद उसके अंदर भेद डालना। भेद का मतलब ये होता है कि उसको उसके संगठन से तोड़ना है। आपके विषय में आपके आदमी ये कहा करते हैं ये ठीक नहीं है, इस तरह से भेद डालना, उसकी मति भिन्न हो जाए, वो अपने संगठन में रहने वाले लोगों से दूर हो जाए। कई प्रकार से भेद नीति डाली जाती है और इसके बाद भी काम न हो तो शक्ति हो तो चौथा नीति है दंड। दंड देना, जेल में बंद कर देना या और किसी तरह का दंड देना। जब तीन नीति से काम न चले तो चौथी नीति अपनाई जाती है। और राजा ने सोचा, वो कहारों ने सोचा कि राजा कहीं चौथी नीति न अपनावे, अर्थात दंड देना न चालू करे। अभी तो बात कर रहा है, कहारों को कह रहा है ठीक से ढोओ, लेकिन निकल कर पालकी से और लाठी लेकर के मारना चालू करे कहारों को, ये ठीक नहीं है। इसके पहले हम लोगों को बता देना चाहिए कि किसकी गलती है। इसीलिए कहार लोग उस गलती करने वाले का उल्लेख कर दे कि ये गलती कर रहा है, ये ठीक से नहीं पालकी ढो रहा है। तो राजा ने सोचा कि आखिर क्या कारण है कि पालकी ठीक से नहीं ढो रहा है, ये जवान है, इसका शरीर गठीला है और अभी अभी लगा है ढोने में, बहुत समय नहीं लगा है, बहुत कम रास्ता चला है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो राजा था वो तुरंत इस बात को तार लिया कि हो न हो ये इसी फेर में है कि मैं ठीक से न ढूंढूं और मुझको छोड़ दिया जाए। यदि एक को छोड़ूंगा तो धीरे धीरे तो ऐसा सब बहाना करेंगे, कुछ न कुछ गड़बड़ी दिखाएंगे। तो इसीलिए उसने सोचा छोड़ना ठीक नहीं है और उसने व्यंग किया, कह दिया। भाई पहले कहा कि भाई तुम बहुत थक गए हो, बूढ़े हो, अकेले ढो करके लाया, और अंत में सखा कहा कि मित्र तुमको कोई सहायता नहीं कर रहा है, अकेले ढो रहे हो पालकी। कहने का आशय था कि सावधान रहो, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे मित्र नहीं हो कि छोड़ दूंगा, पिटाई चालू करूंगा तो जान ले लूंगा। ऐसे वो बोला। लेकिन जब भरत जी थोड़ा भी दुखी नहीं हुए, वो तो अपने को देह मानते ही नहीं थे, देह से परे थे। अभी इसके पहले घटना है कि एक बार डाकुओं ने उनको पकड़ लिया था, माता भद्रकाली के मंदिर में ले गए वो लोग, और उनका खून है, उनका मांस खाने वाले थे डाकू लोग, बहुत नीच लोग। तो अभिमंत्रित किए, बहुत हाको डाको कर रहे थे, पढ़ रहे थे अपने ढंग का, भजन कर रहे काली जी के मंदिर में। तो इनको काली जी के सामने बैठा दिए थे, और डाकुओं का जो पुरोहित था वो भी डाकू ही था, वो शूद्र था। तो अपने तलवार को फरगा रहा था, शान धरा रहा था, और देखने लगा कि एक बार में कट सकता है कि नहीं गर्दन। तो बिल्कुल तीक्ष्ण तलवार थी और आगे बैठाया। जब भरत जी के गले में माला डाला, तिलक किया और कुछ पुआ या चना खाने के लिए दिया, दिया तो वे खाने लगे। इसके बाद भद्रकाली को भोग लगाने के लिए इनको बैठाया, और जानते थे कि हमको मारना चाहते हैं, परंतु देह में आत्मबुद्धि थी ही नहीं। तो ये कभी प्रतिकार नहीं किए, ये केवल यह कह दिए होते कि मैं यहां का हूं, इस पंडित जी का लड़का हूं, मैं ब्राह्मण हूं, तो वो लोग नहीं मारते। शूद्र थे लेकिन फिर भी ब्राह्मण की हत्या नहीं करते थे, परंतु इनका तो व्यवहार और वेशभूषा ऐसा था कि महाशूद्र जैसे थे। उनको पकड़ कर ले गए थे मारने के लिए, और जब डाकुओं का पुरोहित सरदार सबको सावधान किया कि सावधान हो जाइए, एक दो तीन बोल करके अब उनके गर्दन पर तलवार मारना चाहता था। तो सब लोग देखिए, एक दो तीन, तीन कह करके वो तलवार को मारना चाहा, तब तक भद्रकाली जी प्रतिमा को फोड़ करके प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के सबसे पहले उन्होंने उसके तलवार को छीन लिया, छीन करके पुरोहित को काट दिया। और जो मालिक था शूद्रों का उसको भी काट दिया, और जितने उस फेस्टिवल में बैठे थे सबको काटने लगे, भज भज काटने लगी, मस्तक काट काट करके। और काली जी के गण भी प्रकट हो गई, और सब तवे सब फुटबॉल खेलने लगी उनके मस्तक से और खप्पड़ में खून रोक रोक करके गरम गरम और खूब जूस पीने लगी गरम गरम खून बिल्कुल ताजा और गाने लगे ठीक है गा वो लोग गा रहे थे कुछ तो उसी राग में वे गाने लगी नाचने लगी सबको काट करके मार करके अंत में भद्रकाली जी ने कहा महाराज आप अब जाइए तो जब भरत जी उठे और भद्रकाली के मंदिर से चले आए तो बताइए जब इस अवसर पर भी उनका मन विचलित नहीं हुआ वे नहीं घबराए तो इस समय क्या घबराते पालकी ढोए बहुत अच्छा से और राजा के व्यंग करने पर भी ताना मारने पर भी वो दुखी नहीं हुए राजा बोल लिया और सुन रहे थे अंत में सब कहार तैयार हुए चलने के लिए पालकी में तो ये भी तैयार हो गए और पहले की तरह फिर पालकी उठा लिए पालकी में चले लेकिन पहले की तरह ही चाल थी फिर वही चींटी बचाना कीड़ा बचाना और फिर राजा आंदोलित हो रहा था पालकी के भीतर आगे कभी पीछे कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर उधर वो खूब हिल रहा था और तो उसको बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था तो फिर वो कहा पालकी से निकल कर किम दम अरे अरे तुमको क्या हो गया है तुम मर गए हो क्या तुम मर गए हो जो मेरी बात नहीं समझते हो राजा तो इसीलिए बोला था व्यंग कि अब सावधान हो जाएगा और ठीक से चलेगा लेकिन जब भरत जी वो कहा से ठीक से चले उनका ठीक से चलना यही था ना कि चींटी बचाना है कीड़ा बचाना है चाहे राजा पालकी में गिरे चाहे मरे उनको ध्यान नहीं था इसका और वो इस तरह से जर्किंग हो रहा था पालकी का जो निकल कर कहा कि क्या तुम मर गए हो कि किमिदम तुम जीवन मृतोसी जीते जीते मर गए हो क्या तुम्हारी बात नहीं समझते हो जानते हो मैं कौन हूं मैं तुम्हारा स्वामी हूं तुम मेरे सेवक हो मैं राजा हूं जरा ध्यान रखो किसके साथ तुम यह गलती कर रहे हो उसने सोचा कि मैं डांट दूंगा तो ये संभल जाएगा लेकिन पालकी में उसी तरह से परेशान होता रहा बताइए जिसके कंधे पर पालकी है उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और पालकी में बैठा हुआ आराम से राजा रहुगण वो सोचता था कि हमको बड़ा दिक्कत है पालकी में आराम से बैठा हुआ व्यक्ति परेशान हो गया और जिसके कंधे पर पालकी का भार है उसको कोई परेशानी नहीं है यही है माया से पार भक्तों में और मायाबद्ध माया में रहने वाले जीव में अंतर शरीर को मैं मानता था राजा रहुगण और जब भरत जी शरीर से परे थे तो उनमें अद्भुत शांति थी और सब आराम होते हुए भी राजा परेशान था उसने कहा कि अब तुम ठीक से चलो नहीं तो हाथ में डंडा लेकर के कहा कि मैं तुमको ठीक कर दूंगा। जैसे जमराज चिकित्सा करते हैं ना पापियों की, वैसे मैं तुमको मारूंगा। और कोई फरियाद नहीं हो सकती थी उस समय, राजा ही सुप्रीम पावर होता था। और ऐसा नहीं था कहीं कोर्ट है जा करके केस करेंगे कि ऐसे व्यवहार हमारे साथ किया, राजा से बड़ा कोई नहीं था, अतः किसी से कह भी नहीं सकते थे। तो उसने धमकी दिया कि तुम्हें जान मार दूंगा, जैसे जमराज दंड देते हैं वैसे दंड दूंगा। बार बार उसने कहा कि तुम रास्ता नहीं चले हो, तुम पर भार नहीं, तुम भार नहीं ढोए हो देर तक, तुम मोटा नहीं हो, व्यंग किया था, तुम युवक नहीं हो। तो उसी का उत्तर जटभरत जी दे रहे बहुत शांति से, त्वया उदितम व्यक्तम, हे राजन आप जो कहे हैं ये हमारे विषय में ये अविप्रलब्धम, ये कोई उलाहना नहीं है, आप सही बोले हैं कि मैं भार नहीं ढोया हूं। यदि कोई भार है तो ढोने वाले के लिए है, तो कौन ढोया है? भार मैं नहीं ढोया हूं, भार ये शरीर ढोया है। तो शरीर में और हम में बहुत अंतर है। आप बहुत पीटेंगे तो हमको आप नहीं पीट सकते हैं, हमारे शरीर को पीटेंगे। गंतुर यदि शायद अधिगम मध्वा, यदि कोई रास्ता है पथ है तो चलने वाले के लिए है, लेकिन मैं चलने वाला नहीं हूं, ये शरीर चला है। ये है आत्मज्ञान, आत्मा का वर्णन। मैं ये देह नहीं हूं, शरीर मोटा है, मैं दुबला पतला मोटा या युवक कुछ नहीं हूं, मैं विशुद्ध आत्मा हूं। वे इस प्रकार से बोल रहे हैं, बिल्कुल आत्मा के प्लेटफार्म पर, और वो देह के प्लेटफार्म पर बोल रहा था। उसको ये भावना थी कि मैं राजा हूं, यह ज्ञान था। अरे जानता था कि राजा के शरीर में भी आत्मा भी राजा है। ये मूर्ख को पता नहीं था कि आज राजा के शरीर में है आत्मा और कल चींटी के शरीर में जा सकता है, कल पक्षी के शरीर में जा सकता है। ये भ्रम था, वो मान रहा था कि अगर राजा मैं हूं तो आत्मा भी राजा है, केवल देह राजा नहीं है। लेकिन जटभरत जी बताया कि ये केवल देह का हिस्सा है, देह रास्ता चलता है या देह राजा बना हुआ है, देह सेवक बना हुआ है, वास्तव में आत्मा इन सब उपाधियों से परे है। और आगे जटभरत जी का प्रवचन है, जब ये कहता है रहुगण कि मैं युद्ध किया हूं तो मुझको परिश्रम हुआ है, तो इसलिए मैं ऐसा अनुमान करता हूं कि तुमको भी परिश्रम हुआ होगा। मैं भार ढोया हूं, परिश्रम हुआ है, तो तुमको भी परिश्रम हुआ है, रास्ता चलने से थकावट हुई होगी। और जटभरत जी कह रहे थे कि हमको बिल्कुल थकावट नहीं है, मैं बिल्कुल चला नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भार ढोया नहीं हूँ, ये सब शरीर किया है और मैं शरीर से बिल्कुल पृथक हूँ। अंत में उन्होंने भी कह दिया कि तुम मुझको पीटोगे तो तुमको लाभ क्या मिलेगा। यदि सचमुच मैं पागल हूँ, प्रमत्त हूँ, तो पीटने से क्या पालकी ढोऊंगा, और बेहोश हो जाऊंगा या अस्पताल में चला जाऊंगा, तो मेरी चिकित्सा तुम क्या करोगे। और चिकित्सा का मतलब होता था पीटेंगे, बहुत बहुत मारेंगे, तो मारने से लाभ क्या होगा। जैसे पीसी हुई वस्तु को और ज्यादा महीन करने के लिए पीसा जाए तो इसको पेस्ट पेषण न्याय कहते हैं, पीसे हुए को पीसना। और जो व्यक्ति पहले से ही बुद्धू है या बुद्धिहीन है, कमजोर है, तो उसको पीटने से वो तगड़ा थोड़े हो जाएगा। हमारी चिकित्सा तुम क्या करोगे, चिकित्सा देह की करोगे, और मैं देह से परे हूं, हमको तुम पीट ही नहीं सकते हो। इतनी ऊंची बात जब वे बोले आत्मा की, तो राजा वो भी अधिकारी था, वो योग्य व्यक्ति था, वो समझ गया, उसको आश्चर्य हुआ कि इतना हाई क्लास का ज्ञान कहार कैसे दे सकता है, ये शुद्ध है, इतना ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। तो वो भी अधिकारी था, मुकुट उतार करके और सब कहारों के सामने वो उनके चरण में गिर गया, जट भरत जी के, और लगा प्रार्थना करने के हमारे अपराध को क्षमा कीजिए, मैं नहीं जानता था अपराध की, आपसे पालकी ढोआया, आप कौन हैं बताइए, आप कौन हैं जो इस भेष में घूम रहे हैं, आप भगवान कपिल देव ही तो नहीं हैं। यहाँ तक कहा, मैं भगवान कपिल देव के यहाँ जा रहा हूँ सत्संग करने, या सत्संग करने तो जा रहा है लेकिन ऐसे पालकी में कहारों को जोत करके जा रहा है, और थोड़ा डिस्टर्ब होने पर सांप जैसा क्रोधित हो रहा है, तो ये सत्संगी का स्वरूप नहीं होता है। जब सत्संग करने के लिए जा रहे हो तो नम्र होना चाहिए ना। लेकिन राजा रहुगण बहुत उदंड व्यक्ति थे, राजा के भाव में थे कि मैं राजा हूं, तो इतना अभिमान रखते हुए क्या सत्संग करने जा रहे हैं। और थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो इतना क्रोध, क्योंकि वो एक दृष्टि से अधिकारी था, राजा होते हुए भी भगवान कपिल देव के प्रति श्रद्धा थी और जा रहा था। उस समय फ्लाइट नहीं था, ट्रेन भी नहीं थी, नहीं तो चला गया होता। परंतु यह भी बहुत बड़ा त्याग है ना कि पालकी से जाना उतना दूर। आजकल लोग अपने घर के पास अगर कोई सत्संग है तब सुनते हैं, कोई महात्मा आता है तो इतना दूर कौन जाता है, और इतना कष्ट सह करके। तो राजा रहुगण भी एक अधिकारी था, और उसके इसी अधिकार को देखकर जट भरत जी ज्ञान देने लगे। ये ज्ञान वे अपने पिता को नहीं दिए, अपने भाइयों को नहीं दिए, राजा को दिए, रहुगण को। रहुगण सिंधी था लेकिन महान अधिकारी था ज्ञान का, तो उसको जट भरत जी ने ज्ञान दिया। यह ज्ञान की चर्चा 10वें 11वें 12वें 13वें अध्याय में है। बहुत कंप्लीट ज्ञान है। चौदहवें अध्याय तक इसकी चर्चा है, भवाटवी का वर्णन, लेकिन असली टॉपिक है 10, 11, 12, 13, तीन चार अध्याय में यह संवाद है, लेकिन ज्ञान का सागर है। गागर में सागर समुद्र को अटवा दिया जाए, इस तरह से इतने छोटे अध्यायों में जटभरत जी ने यह ज्ञान दे दिया है रहुगण को। अंत में उन्होंने अपना परिचय दिया। रहुगण ने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि अहम पुरा भरतो नाम राजा। इस समय का परिचय नहीं दे रहे हैं, कहते हैं पुरा मैं पहले भरत नाम का राजा था, राजर्षि भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हो गया। पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था। अज मतलब भगवान, ऋषभ देव और नाभि महाराज, तो ऋषभ देव और नाभि महाराज को मिलाकर इसको अजनाभ वर्ष कहते थे, लेकिन भरत महाराज जब राजा हुए तो उनके नाम से इस देश का नाम हो गया भारत। तो मैं पहले भरत नाम का राजा था। तुम राजा हो, वो तो छोटे राजा थे, रहुगण तो बिल्कुल छोटे राजा, लेकिन जटभरत जी कह रहे हैं कि मैं पहले भरत नाम का राजा था। विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंधा, और मैं सब प्रकार की आसक्ति से मुक्त था, देखी हुई और सुनी हुई समस्त वस्तुओं से मेरी विरक्ति थी। मैं परिवार छोड़ करके वन में जा करके भगवान की आराधना कर रहा था, भगवान का भजन कर रहा था, लेकिन इतना सावधान रहने के बाद भी मैं एक हरिण में आसक्त हो गया, और उसके कारण मुझे हरिण में शरीर मिला, हरिण का शरीर मिला। थोड़ी सी आसक्ति ने हमारे जीवन को बिल्कुल रद्द कर दिया, मैं हरिण बना, और अब इस समय इसका कुछ उल्लेख नहीं किए। मैं नहीं चाहता था कि मैं बताऊं कि मैं यहाँ पांडे जी का लड़का हूँ, इस गांव का हूँ, और नहीं तो बहुत मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी कि राजा चेला बन गया, सिंध देश से आकर के या गुजरात से आकर के, तो बहुत बड़ा मेला लगने लगेगा, भीड़ होने लगेगी। तो उन्होंने आगे नहीं बताया, और राजा रहुगण ने पूछा भी नहीं कि इस समय कहाँ आप जन्म लिए हैं, तो पूछा नहीं, इतना ही वे कहे कि हम पूरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट संग बंधा। मैं भरत नाम का राजा था, सब प्रकार की आसक्ति से मुक्त था, लेकिन मृगो भवम मृग संगा धतार था, मृग के संग से मेरे जीवन का उद्देश्य नष्ट हो गया, और मैं मृग हो गया, हरिण हो गया। राजा रहुगण समझ गए कि महाराज अपना वर्तमान परिचय नहीं देना चाहते हैं, तो भी नहीं पूछे, लेकिन ज्ञान हो गया पूरा। तो जटभरत जी गए अपने रास्ते पर, और वो अब तो सत्संग मिल ही गया था, वो भी कृतार्थ हो गया राजा रहुगण, वो भी जड़ भरत जी की तरह एक परमहंस हो गया। यही साधु की विशेषता है। एक कवि ने कहा है कि साधु या संत परम दयालु होते हैं, जैसे स्पर्श मणि पारस पत्थर होता है वो लोहे को सोना बना देता है। लेकिन कवि कहता है कि संत तो उससे बढ़ करके होते हैं, वो लोहे को सोना नहीं किसी को अपने समान बना देते हैं। स्पर्श मणि तो लोहा को सोना बना देता है लेकिन स्पर्श मणि नहीं बना पाता, परंतु संत दूसरे जीवों को अपने समान बना देते हैं। सबसे बड़े स्पर्श मणि श्रील प्रभुपाद थे, जिन्होंने अपने संग से कितने लोगों को भगवान कृष्ण से जोड़ दिया। यह बात है कि सभी प्रभुपाद जी नहीं हो गए लेकिन भगवान की भक्ति में लग गए, यही अपने समान बनाना है। तो जड़ भरत जी राजा को अपने समान भगवान कृष्ण का प्रेमी बना दिए। वो जा रहे थे गंगा सागर लेकिन वहीं से लौट गए सिंध देश में, सौराष्ट्र में लौट गए और घर नहीं गए, पृथ्वी पर घूमने लगे विरक्त बन करके। परमहंस हो गए, ये जड़ भरत जी के संग का प्रभाव हुआ। राजा अब अपनी राजधानी में और अपने घर नहीं गए, जड़ भरत जी के संग से उन्हें वैराग्य हो गया, भगवान में मन लगा करके पृथ्वी पर घूमने लगे, ऐसा प्रभाव हुआ जड़ भरत जी का। हरे कृष्ण जय श्रील प्रभुपाद।
सुना है लेकिन जड़ भरत का फिर वो गोलक धाम किस तरह गए वो जानकारी नहीं है अभी तक।
क्या
जड़ भरत के बारे में दोनों कथा सुनी है लेकिन जड़ भरत इस शरीर में गोलक धाम किस तरह गए वो अभी तक नहीं सुना।
वो तो उनके विरक्ति का ही वर्णन है। तो इसी समय पता लग जाता है ना कोई व्यक्ति कहाँ जाएगा। जिनका मन भगवान में पूर्ण रूप से लगा हुआ है और संसार के किसी भी दुख से विचलित नहीं होता है, तो वही व्यक्ति भगवान के धाम जाते हैं ना। जट भरत जी तो भगवान के धाम में गए, लेकिन कैसे गए, कहाँ गए, किस स्थान पर शरीर छोड़े, इसका वर्णन नहीं मिलता। प्रायः भगवान के भक्तों का या भगवान का अंत कर्म वर्णन नहीं किया जाता है। इतना ही वर्णन आता है कि वे भगवान के धाम में गए, परंतु किस स्थिति में गए ये वर्णन नहीं। मन पूरा लगा हुआ था, इसलिए जो उन्होंने कहा है वही करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। हरिम तदीहा कथन श्रुताभ्याम, भगवान हरि के गुणों का वर्णन करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए, यही कहा है जड़ भरत जी ने। हरिम तदीहा कथन श्रवणाभ्याम लब्ध स्मृति जात्यति पार मध्वना, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में बोलता रहता है और सुनता रहता है तो इस भवाटवी के पार चला जाता है। इस भवाटवी के पार, इस प्राकृत जगत से परे भगवान के दिव्य धाम में चला जाता है, यही उन्होंने कहा है। भगवान का जप करेंगे, कथन करेंगे और श्रवण करेंगे तो लब्ध स्मृति, हमें भगवान की स्मृति हमेशा रहेगी, और भगवान की स्मृति हमेशा रहेगी, मन में वही रहेंगे तो उनके पास जा सकते हैं। तो क्या सुनना चाहते हैं कि जड़ भरत जी किस अस्पताल में शरीर छोड़े, कैसे छोड़े, आप क्या सुनना चाहते थे? यह विचार कीजिए, जिसका मस्तक कटने वाला था और उस समय भी वो घबराया नहीं, कहा नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ मुझे छोड़ दो, वो कितना मन लगा है भगवान में। भगवान में मन लगा है इसकी पहचान कैसे होती है, विपरीत स्थिति में ही होती है ना। इसे भगवान के स्मरण में इतना तन्मय हो जाएं कि खाने की स्मृति ना रहे, सोने की स्मृति भूल जाए, किसी किसी रात को ऐसा हो कि पता ही न लगे कि मतलब स्मरण न आए कि हमको नींद भी लेना है, बस जगे रह गए हरे कृष्ण करते हुए, रात भर जप करते रहे, या पढ़ने में मन लग गया तो भोजन भूल गए, तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए। भगवान की सेवा में, भगवान का नाम लेने में अपने शरीर का विस्मरण हो जाए, ये होना चाहिए, अच्छा है, लेकिन ठीक समय पर भूख लग ही जाती है। अब 9 बजते बजते भूख लगे वो ठीक है, भूख ना लगे तो भी एक खराब है। भूख ठीक से लगनी चाहिए, लेकिन भूख को सहना चाहिए। ठीक है भूख लगी है लेकिन खाएंगे नहीं। भगवान की भक्ति में रहेंगे, जो भी काम है भगवान की सेवा के काम उसमें रहेंगे। हम लोग देखे हैं गांव में लोग हल चलाते थे, पहले की बात है, हल चलाते थे, दौरी हाँकना क्या क्या काम होता था, लेकिन भोजन कभी कभी रखा रहता है, कोई माता जी या कोई घर की लड़की भोजन लेकर के पहुंच जाती थी खेत पर, और भोजन रखा हुआ है पर काम में इतना मन लग जाता था कि खाने की इच्छा नहीं करते थे। भक्त को तो ऐसा चाहिए होना कि कई दिन तक भोजन न मिले कोई बात नहीं, एक दिन एकादशी कौन बड़ी चीज है, ये तो कुछ भी नहीं है। एक दिन उपवास रह जाना यही कठिन है, हम एकादशी फीस्ट करने लगे। एकादशी को फास्ट करना चाहिए तो एकादशी फीस्ट होने लगा, तो उस पर भी एकादशी कुछ लोग नहीं करते हैं, तो ये बहुत कमजोर स्थिति हो गई ना। इसीलिए जट भरत जी जैसे महान पुरुषों का चरित सुनना चाहिए। शरीर कटने का अवसर आ जाएगा, अगर कोई कहे कि छोड़ दो हरि नाम, नाम लेना छोड़ दो नहीं तो अभी काट दूंगा, उसके बाद भी यदि नाम में निष्ठा रहे और शरीर के दुख को सहन करने की क्षमता रहे, मन विचलित न हो, मन में दुख न हो, तब माना जाएगा कि पक्का भक्त हो गए। हरिदास ठाकुर को मार रहे थे जवान लोग 22 बाजार में घुमा घुमा कर पीटे, बेंत से मार रहे थे, लेकिन हरिदास ठाकुर कहते थे हमको और मारो और हरिनाम बोलो। अंत में मारते मारते वे लोग थक गए, और हरिदास ठाकुर इसीलिए थोड़ा सा नाटक किए कि वे शरीर छोड़ रहे हैं, ऐसा जैसे मरने का नाटक किए, देखे कि ये बेचारे थक गए हैं, तो ये लोग समझे कि अब ये मर गया है, तो उनको गंगा जी में फेंक दिए। गंगा जी में इसलिए फेंके कि इसकी दुर्गति होगी, इसको दफनाएंगे नहीं, कब्र में नहीं डालेंगे, गंगा में फेंक देंगे। और जवान लोग तो यही मानते हैं ना कि गंगा आदि में क्या है, गंगा की महिमा नहीं जानते हैं, तो ये लोग गंगा जी में फेंक दिए। लेकिन गंगा जी अपनी लहरों से हरिदास ठाकुर को पूर्ण स्वस्थ कर दी, और फिर वो आ गए शांतिपुर, अद्वैताचार्य के हैं रहते थे। तो ये कुछ उदाहरण हैं कि कितना कष्ट सह करके भी वे भक्ति किए, भगवान में मन लगाए रखे, यही स्टैंडर्ड है। और भूख और नींद को सहना, मान अपमान को सहना, ये भक्ति में बहुत आवश्यक है। परंतु मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं ठीक है तब भूखे रह करके चुपचाप पड़ा रहे। भगवान के नाम जपने में, भगवान की सेवा करने में रहे, और सेवा के आवेश में अगर संसार का स्मरण छूट जाता है, भूख छूट जाती है, नींद छूट जाती है, तो ठीक है। नींद तो ऐसे लोग छोड़ देते हैं। हमको एक भक्त बता रहे थे कि बॉम्बे में लोग दो दो बजे तक टीवी देखते हैं, तो नींद तो अभी छोड़े हैं लेकिन वो सब बेकार है। भगवान के स्मरण में नींद छोड़ना चाहिए और भगवान की सेवा में भूख को सह लेना चाहिए। कितना अच्छा लगता है, एकादशी को हम लोग भूख सह लेते हैं तो द्वादशी को उसका स्मरण करके आनंद आता है, शरीर निरोग रहता है, मन में संतोष होता है कि हमने भगवान का व्रत किया। तो इसीलिए सब व्रत उपवास करना चाहिए, बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।